एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में सबका स्वागत है।
तो आज हम एक तरह की जासूसी करने वाले हैं।
जासूसी? ये तो दिलचस्प लग रहा है।
हाँ, हम जीवन के कुछ सबसे आम चमत्कारों के पीछे छिपे, कह सकते हैं, अदृश्य सुरागों की पड़ताल करेंगे।
जैसे किस तरह के चमत्कार?
जैसे कि एक साधारण सा पत्ता इतनी कुशलता से धूप को ऊर्जा में कैसे बदल लेता है।
अच्छा।
या फिर एक छोटा सा पक्षी हजारों मील का सफर बिना भटके कैसे तय कर लेता है।
हाँ, ये तो वाकई बड़े सवाल है, और इन रहस्यों को सुलझाने के लिए हमारी गाइड है जॉन जो मैकफेडन और जिम अल खलीली की किताब लाइफ ऑन द एज।
बिल्कुल, द कमिंग ऑफ एज ऑफ क्वांटम बायोलॉजी।
ये किताब एक बहुत पुराना और गहरा सवाल पूछती है, जीवन क्या है
और जवाब कहाँ खोजती है। आहे, जिसके नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया से
बिल्कुल अलग है।
तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में उतरते हैं।
बिल्कुल, और इस पड़ताल के लिए हमारे पास एकदम सही जासूसों की जोड़ी है इस किताब के लेखक।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है।
एक तरफ है जॉन जो मैकफेडन, जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं,
यानी वो बायोलॉजी की गीली उलझी भी दुनिया के एक्सपर्ट हैं। कोशिकाएं, डीएनए, बैक्टीरिया।
सही कहा, वो हमारे सामने वो पहेलियां रखते हैं जिन्हें पारंपरिक विज्ञान समझा नहीं पाया है।
और दूसरी तरफ हैं जिम अल खलीली,
जो एक जाने माने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है। वो क्वांटम दुनिया के अजीब नियमों के एक्सपर्ट हैं।
तो यहाँ एक बायोलॉजिस्ट और एक फिजिसिस्ट की सोच का कमाल का संगम है।
बिल्कुल, एक वो है जो क्राइम सीन पर सवाल पूछता है,
और दूसरा वो है जिसके पास उस सवाल को हल करने के लिए एकदम अजीब और नए हथियार हैं, क्वांटम हथियार।
हाँ, तो किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि जीवन अपने सबसे बुनियादी स्तर पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का फायदा उठाता है।
और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि विकास मतलब एवोल्यूशन ने अरबों सालों में इन क्वांटम कर्तव्यों को चुना है, उन्हें तराशा है,
ताकि जीवन ज्यादा कुशल, ज्यादा तेज और ज्यादा मजबूत बन सके।
किताब कहती है कि जीवन क्लासिकल दुनिया,
यानी जो ठोस और प्रेडिक्टेबल है,
और क्वांटम दुनिया जो संभावनाओं से भरी और थोड़ी कह सकते हैं भूतिया है, उसके किनारे पर नाच रहा है।
एक नाजुक संतुलन।
हाँ, एक बहुत ही नाजुक संतुलन। जीवन ना तो पूरी तरह से एक मशीन है और ना ही पूरी तरह से क्वांटम धुंध।
ये दोनों का मिलाजुला रूप है।
सही कहा, ये किताब भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर के 1944 के मशहूर सवाल जीवन क्या है को एक नए नजरिए से देखती है।
और अब दशकों के नए सबूतों के साथ ये हमें दिखाती है कि जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत हो सकता है।
तो चलिए सबसे बड़ी पहेली से शुरू करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण,
फोटोसिंथेसिस।
बिल्कुल, एक पौधे का पत्ता जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो लगभग 95% से ज्यादा की एफिशिएंसी से,
95% से ज्यादा,
हाँ, उस ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। ये कैसे मुमकिन है? हमारे बनाए हुए सबसे अच्छे सोलर पैनल भी इसके आसपास नहीं पहुंचते।
यही तो सवाल है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब प्रकाश की ऊर्जा का एक पैकेट जिसे एक्सिटॉन कहते हैं,
जब वो पत्ती के अंदर दाखिल होता है तो उसे रिएक्शन सेंटर तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उसे भटकना चाहिए
और बहुत सारी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जानी चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं होता।
एक मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक साधारण पत्ता जिसे हम हर रोज देखते हैं वो असल में एक क्वांटम सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, एक तरह से, राम,
जो एक ही समय में हजारों रास्ते जांच कर तुरंत सबसे अच्छा रास्ता चुन लेता है।
बिल्कुल, ये प्रकृति का अपना गूगल मैप्स है, लेकिन उससे भी लाखों गुना तेज।
और ये होता कैसे है?
ये जिस क्वांटम नियम की वजह से होता है उसे कहते हैं कोहेरेंस।
कोहेरेंस,
एक्सिटॉन एक कण की तरह एक रास्ते पर नहीं चलता बल्कि एक लहर की तरह फैल जाता है और एक ही समय में सभी मुमकिन रास्ते अपनाता है।
सभी रास्ते एक साथ?
हाँ, लेखक इसे एक क्वांटम गुनगुनाहट कहते हैं जो ऊर्जा को बिना बर्बाद हुए सीधे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है।
वाह, तो पौधों ने तो इस क्वांटम ट्रिक से ऊर्जा की समस्या हल कर ली।
बिल्कुल,
लेकिन हमारे अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है?
क्या हम भी ऐसे क्वांटम कर्तव्य इस्तेमाल करते हैं?
हाँ, यही सवाल है।
बिल्कुल, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एंजाइम्स।
एंजाइम,
एंजाइम्स हमारे शरीर में होने वाली केमिकल प्रतिक्रियाओं को अरबों गुना तेज कर देते हैं। स्कूल में हमने ताला चाबी मॉडल के बारे में पढ़ा था।
हाँ, कि एंजाइम और अणु एक दूसरे में फिट हो जाते हैं।
लेकिन ये मॉडल उनकी रफ्तार का राज नहीं बता पाता।
तो फिर असली राज क्या है?
यहाँ असली जादू एक और क्वांटम करतब से होता है, जिसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग।
टनलिंग, सुरंग बनाना, इसका क्या मतलब है?
बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको एक पहाड़ पार करना है तो आप उस पर चढ़ के जाएंगे, जिसमें बहुत ऊर्जा लगेगी।
सही बात है।
लेकिन क्वांटम दुनिया में एक कण के पास पहाड़ के आर पार एक सुरंग बनाकर दूसरी तरफ पहुंचने की भी क्षमता होती है।
बिना चढ़ाई किए?
बिना चढ़ाई किए। और एंजाइम यही करवाते हैं, वे एक प्रोटॉन जैसे जरूरी कण को ऊर्जा की दीवार पर चढ़ाने के बजाय उसके आर पार सुरंग बनाने में मदद करते हैं।
और इसी वजह से प्रतिक्रियाएं इतनी तेज हो जाती हैं।
हाँ,
ये तो सच में कमाल है। मतलब हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों करोड़ों क्वांटम सुरंगें बन रही हैं।
कह सकते हैं।
लेकिन अब उस पहेली पर आते हैं जिसने मुझे हमेशा हैरान किया है, पक्षियों का दिशा ज्ञान।
हाँ, एवियन नेविगेशन।
यूरोपीय रॉबिन जैसा एक छोटा सा पक्षी हजारों मील दूर अफ्रीका से यूरोप तक बिना किसी नक्शे या जीपीएस के कैसे पहुंच जाता है?
ये क्वांटम बायोलॉजी के सबसे आश्चर्यजनक आइडियाज में से एक है। थ्योरी ये है कि पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सचमुच देख सकते हैं।
देख सकते हैं मतलब आंखों से?
हाँ, और इसका कनेक्शन एक और बहुत ही अजीब क्वांटम कॉन्सेप्ट से है, जिसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट या उलझाओ।
एंटेंगलमेंट, ये वही है ना जिसमें दो कण जुड़वा बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं, चाहे कितनी भी दूर हो।
एकदम सही। होता यह है कि पक्षी की आंख के रेटिना में रोशनी पड़ने पर एक मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो आपस में उलझे हुए होते हैं।
अच्छा।
अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के स्पिन पर अलग अलग तरह से असर डालता है। यह असर उनके बीच के उलझाव को बदलता है।
और उससे क्या होता है?
उससे एक केमिकल सिग्नल पैदा होता है, और यह सिग्नल पक्षी की आंखों के सामने एक पैटर्न या तस्वीर बना देता है।
रुके रुके, मतलब पक्षी आसमान में चुंबकीय क्षेत्र की लाइनों को एक तरह के ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट की तरह देख सकता है।
सिद्धांत तो यही कहता है।
ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब मेरा जो दिशाओं का ज्ञान इतना खराब है, उसके लिए मैं अपनी आंखों के क्वांटम कंपास की कमी को दोष दे सकता हूँ?
शायद दे सकते हैं। और सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो एक भौतिक विज्ञानी के तौर पर भी मुझे ये यकीन करना मुश्किल लगा।
लेकिन अब सबूत मिल रहे हैं।
हाँ, इसके पक्ष में अब काफी सबूत मिल रहे हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति ने भौतिकी के कितने गहरे नियमों का इस्तेमाल किया है।
ये सब सुनने के बाद कुछ बड़े विषय और संदेश साफ नजर आते हैं। मेरे लिए पहला और सबसे अहम है, जीवन किनारे पर है।
लाइफ ऑन द एज, किताब का नाम ही यही है।
जीवन न तो पूरी तरह से हमारे ठोस दुनिया के नियमों पर चलता है, और न ही पूरी तरह से क्वांटम दुनिया की अनिश्चितता में खोया हुआ है।
ये एक रस्सी पर चलने वाले बाजीगर की तरह है।
हाँ, जो दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाकर क्वांटम दुनिया का फायदा उठाता है।
बिल्कुल। और दूसरा विषय ये है कि क्वांटम प्रभाव एक विकासवादी टूलकिट है।
एक टूलकिट?
हाँ, सुपरपोजिशन, टनलिंग, एंटेंगलमेंट, ये सिर्फ अजीब थ्योरी नहीं है। ये वो औजार हैं जिन्हें प्रकृति ने अरबों सालों में जिंदा रहने की समस्याओं को हल करने के लिए तराशा है।
जैसे हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजार बनाए, वैसे ही विकास ने क्वांटम औजार बनाए हैं।
बहुत अच्छा उदाहरण है।
तीसरा विषय है, कोहेरेंस से मिलने वाली बेमिसाल दक्षता।
हाँ, एफिशिएंसी। चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो या कोई और प्रक्रिया, क्वांटम कोहेरेंस जैविक सिस्टम को लगभग 100% कुशल बनाती है।
यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की एफिशिएंसी के पीछे एक गहरा क्वांटम रहस्य छिपा है, जो हमारी इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है।
और चौथा, जो इन सबको जोड़ता है, वो है जीवन क्या है की नई परिभाषा।
अच्छा।
शायद एक जीवित चीज सिर्फ अणुओं का ढेर नहीं है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो क्वांटम घटनाओं को सक्रिय रूप से पकड़ कर रखती है, उन्हें नियंत्रित करती है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है।
मतलब शायद यही वो चीज है जो एक जीवित कोशिका को उसी कोशिका के मरने के एक पल बाद के अणुओं के ढेर से अलग करती है।
शायद ये एक बहुत गहरा विचार है।
किताब के कुछ विचार तो सच में दिमाग में बैठ जाते हैं। एक ये है, जीवन क्वांटम खाई के किनारे एक नाजुक नृत्य करता है और अपनी अजीबोगरीब शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है।
ये किनारे वाला आइडिया बहुत शक्तिशाली है ना?
बहुत ज्यादा। और दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, क्वांटम दुनिया में एक कण को अपनी मंजिल खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ता।
एक भूत की तरह, ये एक ही बार में सभी संभावित रास्तों का पता लगा सकता है और तुरंत सबसे कुशल रास्ते को चुन सकता है।
ये क्वांटम दुनिया की अविश्वसनीय स्मार्टनेस को दिखाता है।
बिल्कुल।
और एक तीसरा आइडिया है जो हमारी पुरानी सोच को चुनौती देता है, डीएनए के बारे में।
हाँ, म्यूटेशन वाला।
डीएनए को बहुत स्थिर माना जाता है, लेकिन उसमें बदलाव यानी म्यूटेशन भी होते हैं। किताब में ये विचार दिया गया है कि डीएनए के धागों को जोड़ने वाले प्रोटॉन कभी कभी
क्वांटम टनलिंग के जरिए अपनी जगह बदल लेते हैं।
हाँ, और अगर ये ठीक उस वक्त हो जब डीएनए कॉपी हो रहा हो तो एक स्थायी म्यूटेशन हो जाता है।
ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब जीवन और मौत का खेल, विकास की पूरी प्रक्रिया,
क्या वो सचमुच एक छोटे से प्रोटॉन के सुरंग बनाने या न बनाने जैसी रैंडम घटना पर टिकी हो सकती है?
यही तो इस फील्ड का रोमांच है। यह हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि विकास की प्रक्रिया के पीछे शायद एक क्वांटम इंजन काम कर रहा है।
ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन ये दिखाती है कि क्वांटम दुनिया का असर कितना गहरा हो सकता है।
बिल्कुल। और इन विचारों के सिर्फ सिद्धांतिक मायने नहीं है, इनके व्यवहारिक असर भी बहुत गहरे हो सकते हैं।
जैसे कि दवा डिजाइनिंग।
हाँ, सोचिए, दवा डिजाइनिंग में क्रांति आ सकती है अगर हम ठीक ठीक समझ जाएं कि एंजाइम क्वांटम टनलिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हम ज्यादा सटीक और असरदार दवाएं बना सकते हैं।
और कैंसर रिसर्च में भी।
बिल्कुल। डीएनए म्यूटेशन की क्वांटम प्रकृति को समझना कैंसर रिसर्च को एक नई दिशा दे सकता है।
और टेक्नोलॉजी में तो इसका असर जबरदस्त हो सकता है।
सोलर पैनल्स।
हाँ, अगर वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम कोहेरेंस की नकल कर पाए तो हम लगभग 100% कुशल सोलर पैनल बना सकते हैं।
ये हमारी दुनिया की ऊर्जा समस्या को हमेशा के लिए हल कर सकता है। ये एक असली क्रांति होगी।
और इन सबसे बढ़कर ये प्रकृति के प्रति हमारे नजरिए को बदलता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
अगली बार जब कोई एक हरी पत्ती या आसमान में उड़ते हुए किसी पक्षी को देखे तो ये सोचना कितना अद्भुत है कि उसके अंदर
एक अदृश्य स्तर पर क्या अविश्वसनीय क्वांटम जादू चल रहा है।
यह प्रकृति के प्रति सम्मान और आश्चर्य की भावना को और भी गहरा कर देता है।
सही कहा।
तो अंत में इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन सिर्फ जटिल रसायन विज्ञान नहीं है,
यह एक क्वांटम एक्ट है।
हाँ, एक क्वांटम एक्ट। विकास कोई अंधी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक क्वांटम इंजीनियर है जिसने भौतिकी के सबसे गहरे और सबसे अजीब नियमों का इस्तेमाल करना सीख लिया है।
और मेरे लिए ये परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कोशिका एक मशीनी घड़ी की तरह नहीं,
बल्कि
एक जीवंत गुनगुनाती क्वांटम मशीन की तरह है। यह किताब जीवन के सबसे बड़े सवालों को ब्रह्मांड के सबसे छोटे और सबसे अजीब नियमों से जोड़ती है।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम अभी भी जीवन के रहस्य के सतह को ही खरोच रहे हैं।
बिल्कुल, ये सचमुच दिमाग चकरा देने वाला है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।